सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के दस लक्षण महापर्व की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज पिछले दिनों हम निरंतर अपने जीवन को साफ सुथरा और अच्छा बनाने के लिए अलग अलग तरह से कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों ये सीखा है कि हमारे जीवन में क्रोध के बहुत अवसर आते हैं और यदि हम क्रोध करते हैं तो अंततः हम ही दुख पाते हैं। ये किसी ने हमसे कहा नहीं है, ये हमने खुद अपने अनुभव से सीखा है। तब यदि हमें अपने जीवन को दुख से बचाना है तो जब भी क्रोध के अवसर आए हम क्रोध न करें, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम क्षमा भाव धारण करें। क्षमा भाव धारण करने से हमारे भीतर सहनशीलता बढ़ती है, हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारा धैर्य बढ़ता है। जो व्यक्ति इन सब चीजों को अपने भीतर बढ़ाना चाहता है उसके लिए जरूर से क्षमा भाव धारण करना चाहिए। ये हमने सीखा। हमने दूसरी बात यह भी सीखी कि हमारे भीतर विचारों में, हमारे वाणी में, हमारे शरीर में मृदुता या कि कोमलता होनी चाहिए। इंग्लिश में लीनियंसी कहलाता है या कि जेंटिलनेस कहलाता है। मृदुता या कोमलता के मायने हैं बहुत, कहते हैं ना अपन बहुत लीनियंट है, बहुत जेंटिल पर्सन है, मतलब किसी के प्रति भी हमारा व्यवहार कड़ा नहीं हो पाता, न वाणी, न हमारा अभिप्राय और न ही हम शरीर से कोई इस तरह की चेष्टा करते हैं जिससे कि दूसरे के प्रति हमारे मन में कटुता या कठोरता आ जाए। ये भी हमने सीखा। इन सब चीजों का प्रभाव अगर हम देखें तो हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। कोई व्यक्ति सहनशील हो, कोई व्यक्ति धैर्य रखता हो, क्षमावान हो, उससे और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। कोई व्यक्ति बहुत कोमल स्वभाव का हो, मृदुता उसके भीतर हो, तब भी आने वाली पीढ़ी को यह मैसेज मिलता है। हम अपने जीवन को इससे ये लगता है हमें, कई बार हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि इससे ये मतलब हुआ कि अगर हम अपने को अच्छा बनाते हैं तो ये तय है कि हमारे आसपास भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और यदि हम अपने जीवन को बुरा बनाते हैं तो बाहर भी हमारे कुछ ना कुछ बुरा घटित हुए बिना नहीं रहेगा। एक बहुत छोटी सी घटना है। किसी परिवार में दो भाई रहते थे, तो बड़े भाई को सब लोग दादा बोलते थे और छोटे भाई को छोटे भैया बोलते हैं। तो बच्चे लोग देखते रहते थे। बच्चों ने एक दिन खेल खेला। क्या खेल खेला? मैं पहले इस चीज को सुना चुका हूं, सब लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कि वो सुनी वाली बात है है ना? पर देखो, अपन को तो उतनी चीजें हैं ही अपने पास, अब चाहे आप कभी भी सुनो, लेकिन हम दूसरे ढंग से सुना देते हैं उसको। तो वो दादा दादा का खेल खेलने का उनका मन हुआ, बच्चों का, तो खेल शुरू हो गया। एक बच्चा जो है वो दादा बन गया, एक बच्चा छोटा भैया बन गया और खेल शुरू हो गया। अब जैसा जैसा वो दादा करते हैं, उनका जैसा व्यवहार है, वो बच्चे सब देखते रहते थे, इसलिए बिल्कुल वो भी वैसे ही व्यवहार कर रहा है, अपने बिल्कुल पढ़ने लिखने में लगा हुआ है, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं, किसी ने आकर के कहा तो उतने ही जवाब दे दिया। अब दादा का स्वभाव जैसा था वैसा बच्चों ने देख लिया। सबसे बड़ी बात तो ये लगी कि थोड़ी देर में उनका खेल गड़बड़ा गया। खेल गड़बड़ाने पर वे किसी के पास नहीं पहुंचे, सीधे दादा के पास पहुंचे शिकायत लेकर के कि इन्होंने खेल गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया भाई? तो ये दादा बने थे और हम छोटे भैया बने थे, ठीक है? तो इन्होंने अपना दादा का फर्ज पूरा नहीं किया। क्या फर्ज है दादा का? अब वो इतने मजे से कहता है कि दादा का फर्ज है कि वो छोटे भैया को कभी नहीं डांटते, और ये जो दादा बना है ना, इसने अभी हमको डांटा और हम छोटे भैया हैं। तो दादा तो कभी छोटे भैया को नहीं डांटते, और जब हम छोटे भैया बने हैं तो फिर ये दादा बना हुआ हमको डांटता क्यों? अब ये घटना हमें क्या शिक्षा देती है कि हमारा अपना व्यवहार वो आसपास के वातावरण को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे इन सारे अच्छे बुरे संस्कारों को और आगे बढ़ा देती है। बहुत विरले लोग हैं जो बुरे संस्कारों को तोड़ करके और एक नए संस्कार पैदा करते हैं, वरना तो हम अपने धीरे धीरे जो संस्कार हमें मिले हैं उन्हीं को हम ट्रांसफर करते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। इसलिए भी हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए ताकि आने वाले लोग भी हमसे कोई प्रेरणा ले सके। आज तीसरी बात और हमें सीखनी है। क्या बात हो गई? अच्छा अच्छा, वो उनके कान की मशीन गड़बड़ हो गई क्या? वो लगा के आते हैं उसका खराब हो गया, वो कह रहे थे कि थोड़ी धीमी हो गई। अभी मैं थोड़े जोर से भी बोल सकता हूं, अगर बोल नहीं रहा हूं तो। आर्जो के बारे में आज अपन को समझना है। माया के कई अर्थ हैं। आर्जो का अर्थ है सरलता, और माया का अर्थ है जैसा नहीं है वैसा प्रकट करना, पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है इल्यूजन, मिथ्या प्रगटीकरण करना। इल्यूजन कहलाता है जो चीज है ही नहीं वैसा दिखाई पड़ना, जैसे कि मृग को दिखाई पड़ता है कि पानी है और होता है ही नहीं वहां पर, ये भी माया कहलाती है। और एक माया के मायने हैं आडंबर या दिखावा, और एक माया के मायने हैं जो अपने घर में अपन जोड़ करके रखते हैं, हैं? माया। आज आपने आर्यो धर्म का किया होगा, उसमें तो दिया हुआ है, चोरन के पुर ना बसे सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, उसी में है कि इसी में है ना आर्यो में। तो ये मामला क्या है, आर्यो के मायने तो सरलता होना चाहिए, और ये चोरन के पुर ना बसे सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, संपदा और सरलता से क्या मतलब? वो ठीक है, अब वो उतना याद रहता अपने को जितना काम चलना चाहिए। सही है, कपट न कीजिए कोई चोरन के पुरनाभ से सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, यानी माया का अर्थ धन संपत्ति से भी है। अपन कहते ना कि बहुत माया ने जोड़ के रखो, देखो कोई का नाम अगर ऐसा हो तो बुरा ही नहीं मानना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी कि हमारी बहुत बुराई चल रही है आज। महाराज हीरक जी ने भी कह रही कि ऐसे निभाव चाहिए, महाराज भी यही कह रहे हो ना, हम वही नाम से कोई वो नहीं, हमारे अपने गुण और अवगुण का हमारे नाम से ज्यादा कोई संबंध नहीं होता। चार बातें हो गई कि माया के मायने छल कपट तो है ही, माया के मायने आडंबर और दिखावा भी है, माया के मायने एक मिथ्या व्यवहार भी है, और माया के मायने वो जो धन संपदा जो हमें मूर्छित कर देती है वो भी माया ही है। हमें इन चीजों से बचना चाहिए, ये भी बहुत स्पष्ट सी बात है ना, हमें जैसे हैं वैसा ही प्रकट कर देना चाहिए अपने आप को, इतना ईमानदार तो व्यक्ति को होना चाहिए। हालांकि ये बहुत कठिन बात है, आज के समय में तो और ज्यादा कठिन है। आज हम अगर ईमानदार होते हैं तो बहुत मुश्किल से कोई हमारे ऊपर विश्वास करेगा, क्योंकि वो ईमानदारी के पीछे कई बार बेईमानी देख चुका होता है व्यक्ति। इसलिए हम सबका अनुभव तो ये है कि अगर कोई ईमानदारी भी हमारे प्रति कर रहा है तो उसमें से भी हमें बेईमानी की गंध आती है, क्योंकि हमारा सोच वैसा हो गया है, हमने वैसा धोखा कई बार खाया है ईमानदारी में। तो क्या करें हम, अगर कोई व्यक्ति हमारी ईमानदारी का लाभ उठा के हमसे धोखा करता है तो क्या हम भी उसके साथ धोखा करें, या हम अपनी ईमानदारी को बनाए रखें? ये हमें निर्णय करना पड़ेगा। तो आज के दिन हमें निर्णय करना क्या है, वो तो निर्णीत है पहले से कि कोई कितना भी हमारे साथ धोखा करे, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी बना करके रखनी है, क्योंकि आप ठगाएं सुख उपजे पर ठगियां दुख होए। बहुत स्पष्ट सी चीज, अगर हम ठगे भी जाते हैं तो थोड़ी देर दुख होता है, फिर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हमने तो नहीं ठगा ना किसी को, अगर हम ठग लेंगे किसी को तो थोड़ी देर नहीं, जब जब उसकी स्मृति आएगी तब तब वो बात पीड़ा देगी। जैसे हम रास्ते से चले जा रहे हैं और किसी व्यक्ति कोई मिल गए मित्र, और उन्होंने कहा कब आए, अरे 8 दिन हो गए जब से आए, ऐसा हमने उनके साथ छल कर दिया। और मान लो दूसरे एक और व्यक्ति मिले, उनने पूछा अरे कब आए, हाँ अभी तो आए 1-2 दिन ही तो हुए हैं अभी, बड़े इजीली बोलते थे हम ऐसा, पता नहीं हमारे अभिप्राय में क्या होता है या कि हमारे संस्कार ऐसे हो गए, फौरन कह देते अभी 1-2 दिन तो हुए हैं। और अगर तीसरा कोई मिले तो उससे क्या कह देते हैं, अभी तो आए हैं, उतरे ही उतरे हैं, सीधा ट्रेन से चले आए। अब अगर वो तीनों एक साथ मिल जाए तो गड़बड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तीनों अगर आगे जाकर के तीनों एक साथ मिल जाए अब आप क्या जवाब देंगे? वो कहेगा कि ये तो कह रहे थे 8 दिन, ऐसा झूठा पड़ जाते हैं हम तो, हमें दुख ही होता है, बात हमेशा दुख मिलता रहेगा अगर हम झूठे पड़ गए। हम झूठे ना पड़े यही हमारा आर्यो धर्म है भैया, ईमानदार हम बने रहें, हम अपने व्यवहार में, हम अपने विचारों में, हम अपने वचनों में, सब में हम ईमानदार बने। देखो बाबा भारती की कहानी सबको मालूम, बाबा भारती का घोड़ा बहुत सुंदर था, एक डाकू को वो बहुत पसंद था, उसने कई बार कहा कि बाबा ये घोड़ा मुझे दे दो, बाबा ने कहा नहीं मेरे तो एक ही है मैं कैसे दे सकता हूं, तो बाबा ठीक नहीं होगा,
मैंने कहा ठीक है जैसा तुम्हें करना हो। तो एक दिन चुरा के तो नहीं ले गया लेकिन छल से ले गया था, बाबा को भिखारी के वेश में रोक करके पीछे बैठ गया, बाबा को धक्का दे करके खुद घोड़े को ले जाने लगा। बाबा ने कहा ठहरो, ले जाते हो तो ले जाओ लेकिन किसी से कहना मत कि मैं एक भिखारी के वेश में ठग करके बाबा से घोड़ा लाया हूं, ये मत कहना किसी से। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है, कह भी देंगे तो? नहीं, फिर लोगों का विश्वास भिखारी के ऊपर से उठ जाए। हम जब छल करते हैं तो जो सच्ची चीज है उस पर से भी हमारा विश्वास उठने लगता है, ऑथेंटिसिटी भी बनी रहे। जितना व्यक्ति ईमानदार होगा उतना अधिक प्रामाणिक होगा, उतना अधिक विश्वस्त होगा, और जितना अधिक व्यक्ति बेईमान होगा वो अपना विश्वास खो देगा। अगर आज वर्तमान में हम एक दूसरे का विश्वास नहीं जीत पाते हैं तो हमें अपना आत्मनिरीक्षण खुद करना चाहिए कि संभव है हम कहीं बेईमान हो गए हों, क्योंकि बेईमानी विश्वास को तोड़ती है, ईमानदारी हमारे विश्वास को मजबूत करती है, हमें प्रामाणिक बनाती है। आज हमारे जीवन में दुख का एक कारण यह भी है कि हमने अपनी प्रामाणिकता, हमने अपना विश्वास, हमने अपनी ईमानदारी खो दी है। एक अर्थ और है, वो है ओपन हर्टनेस या कि वार्म हर्टनेस, जिसको कहते हैं उन्मुक्त हार्दिकता। यह भी धीरे धीरे खत्म हो गई, अपन किसी से बहुत खुल के कहां मिल पाते हैं। एक भय भीतर बना रहता है कि अगर सच्ची कह दी तो ऐसा ना हो कि बुरा मान जाएं, इसलिए हम दूसरे के सामने झूठे बन जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं जब बुंदेलखंड में कहते कि थोड़ी देर की बुराई और जिंदगी भर को सुख, सुख के अली भैया। दो प्रकार के लोग होते हैं जिनमें से बुंदेलखंड में कहते हैं कि भड़भड़िया से कछु डरावे की बात नहीं है, मानो घू आदमी से डराइयो बहुत है, वो कैद कछु नहीं है, मानो मौका पे फिर ऐसी करेगा कि तुम्हें आगे पीछे कछु हाथ धर वे लोग को अवसर नहीं दे, मन निकलेगी बात होगी। और जो ओपन हार्टेड है, जिसने अपना सब कुछ खुला रखा हुआ है, ऐसा है बस मैं अच्छा हूं, जैसे कि बेटा जो है बहुत बचता रहता है कि अब भी माँ ने बहुत अच्छे कपड़े पहनाए और गंदे ना हो जाए, पर अब वो तो हो ही गई, तो किसी बच्चे ने धक्का दे दिया तो गिर गए नाली में, अब क्या करेंगे। अब वो चुपता फिरता है, थोड़ा सा आप कर लेता है, अब माँ के सामने कैसे जाए। फिर थोड़ी देर में उसको लगता है कि नहीं क्या होगा, बदलेगी तो मां ही बदलेगी, कपड़े दूसरे पहनाएगी तो वही, घर में तो जाना पड़ेगा, बच्चों यहां वहां घूमने से क्या पढ़ना है। सीधे जाके मां के सामने खड़े हो जाता, जी हो गए ऐसे, जो करने हो सो कर लो बस। अब क्या करेगी मां, थोड़ा डांटेगी, ज्यादा होएगा तो एक तमाचा मार लेगी, पर अच्छे कपड़े तो पहना देगी। सवाल ये है, मैं अच्छा तो हो जाऊंगा, कोई मुझे थोड़ी देर के लिए बुरा कह लेगा, मैंने बुरा किया है तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर को लोग सब थू थू कर लेंगे, बुरा मान लेंगे कि अरे ये ऐसा है, पर उसमें तो शुद्ध हो जाऊंगा। ये अगर लालच हमारे भीतर हो, अपनी पवित्रता अपनी शुद्धता का लालच हो, तो अपन ओपन हार्टेड होने में कोई देर नहीं लगेगी। वार्म हार्टेड जिसको कहते हैं, हम बड़ी उन्मुक्तता से व्यक्ति से सामना कर लेते हैं, वरना तो नीची नजर करके जो जितना छल कपट करेगा, नजर नीची करके ही चलेगा, या कि बहुत वर्षों हो जाएंगे छल कपट करते हुए, तो फिर वो अपने शरीर को भी ऐसा बना लेगा कि प्रकट ही नहीं होने देगा। ऐसा भी हो सकता है, संभव है, पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, जैसे कहते ना कि अगर दीपक जल रहा है घर में तो तुम कितना ढांको, रोशनी तो देखिए कहीं ना कहीं दरार में से निकल ही जाएगी। इसी तरह से छल जो है वो कितना ही ढांक लो हम, लेकिन वो तो प्रकट हुए बिना नहीं रहता, इससे बेहतर कि हम खुद अपने को प्रकट कर दें। ये बात जो है बहुत अधिक वर्णी जी के जीवन में थी, बहुत ओपन हार्टेड, बहुत उन्मुक्त, बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत पारदर्शिता। एक बहुत अच्छा शब्द है पारदर्शिता, मैं सोचता हूं कि यह बहुत अच्छा शब्द है, बहुत निकट शब्द है सरलता के लिए। बहुत पारदर्शी, बाहर भीतर एक जैसा, ट्रांसपेरेंट, जिसको आर पार आप देख लो कि ऐसा है, बस ऐसा ही है। ऐसा वर्णी जी का स्वभाव था। सभा में बैठे हैं, किसी ने पूछा कि बाबा जी भिंडी खाओ चाहिए कि नहीं, भक्ष्य है कि अभक्ष्य है। अपन इस उदाहरण को कई बार सुन चुके हैं कि भिंडी भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, खाओ चाहिए कि नहीं। सुखा कहने लगे वर्णी जी, जब आप तो एक तरफी, कहने लगे भैया हमें तो भाव थे सो हम खाते। अब पहली बात तो उनने ये बता दी कि हमें भाव थे सो हम खाते हैं, और जब बाबा जी खाते हैं तो अभक्ष्य तो हो नहीं सकता। जवाब भी होगा और अपनी कमजोरी भी बता दी। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी स्वयं जानता है और प्रकट करने में शर्म नहीं करता है, अरे एक जगह लिखा है कि झूठ बोलने में शर्म आनी चाहिए, सो झूठ बोलने में तो शर्म नहीं आती, जब झूठ प्रकट होने लगता तब शर्म आती है। बड़ा आश्चर्य है, शर्म उस समय आनी चाहिए थी जब छल कर रहे थे, तब तो शर्म नहीं आती, जब छल खुलने लगा तब हमें जो है लज्जा आती है। नहीं भाई, लज्जा तो हमें उन बुरे कार्यों से आनी चाहिए जिनको हम स्वयं बुरा मानते हैं, या दूसरा कोई करे तो हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं। और एक उदाहरण वर्णी के जीवन का है। क्या हुआ, वो एक बार कहीं दान लिखवाया जा रहा था, तो बहुत उनकी भावना बहुत होती थी, दे दो कोई के काम में आए, सब चीजें दे देते थे। 300 रुपया या 3000 रुपया दान, 300 ही हुए, बहुत पुराने समय की बात है, 300 रुपया लिखवा दे। अब घरे आए, अब भाई जी को कैसे बताएं कि 300 लिखवाए आए, तो अब अपनी पासबुक में उनने जमा करना शुरू। 3 रुपया मिलते थे फल खाने के लिए, सुबह 3-3 रुपये जमा होने लगे, महीना भर में 3 रुपया। अब कब तक चुकें भी? भाई जी को कुछ समझ में आया कि बात कुछ ठीक नहीं लग रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर पूछा नहीं एकदम। कोई अपने साथ छल करे तो उसको प्रकट करने का मौका देना चाहिए, हैं? हाँ, अपने हाँ, उसको छल उनके सामने कह दो तो उसके अहंकार को चोट पहुंचती, अहंकार को चोट पहुंचती तो फिर उसको क्रोध भी आ सकता है। इसलिए अगर कोई छल करे तो उसको इतनी गुंजाइश दो कि हाँ धीरे से, कछु नहीं। अगर वो हमें याद नहीं रहा, एक जी ने पढ़वाया था कि धीरे धीरे पूछ लो कैसे फूट गई एकदम। हाँ, वो उसका अब जब तक याद नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा। तो उसके छल को स्वयं प्रकट मत कर, ये हमारी सज्जनता है, उसे छल प्रकट करने का स्वयं अवसर दे। तो भाई जी ने देखा उनकी टेबल पे जाकर के, तो वहां पर पासबुक पड़ी थी। अच्छा, अब समझ में आ गई ये कुछ बात है। सो दूसरी क्या होशियारी की, वहां पूछ के आई कि काय फल फूल वालों सफी है तो सफी खाऊ तो फल फूल बेच। वो से पूछी कि काय हमारा भैया आउ थे फल ले भी, कहने लगे तो बरका के निकल जाते उतर भी से, बहुत दिन से नहीं आए। समझ गई वे कि बात क्या है। वर्णी जी से धीरे से कहा कि क्यों भाई फल वगैरह नहीं खा रहे? वर्णी जी झूठ नहीं बोल पाए, लेकिन छुपा जरूर लिया था, अभिप्राय में खोटापन नहीं था, ध्यान रखना, छल नहीं था, लेकिन भय जरूर था, भाई जी से भय था। उस भय की वजह से अब जब भाई जी ने पूछा कि जे पैसा फल खाते हो? नहीं खाते, सच बोला। जे पासबुक में पैसा जमा कर रहे, काय के लिए? भाई जी 300 रुपया की बोली लई थी उसके चुकाने के लिए, बात साफ है। कहीं कोई मन में इस तरह का भाव नहीं था, लेकिन भयवश जो है हम ओपन हार्टेड नहीं हो पाते हैं, प्रकट नहीं कर पाते हैं। और जब जैसे ही ये चीज प्रकट हुई तो भाई जी ने क्या कहा, भैया आज से हमारी सारी संपत्ति तुम ले लो, चाहे जैसी खर्च करो, लेकिन हमारे साथ रह करके मिथ्या व्यवहार मत करो। बस इतनी बात कही, भयवश भी मिथ्या व्यवहार मत करो, अपना जीवन अच्छा बनाए रखो। थोड़ी थोड़ी सी स्वार्थों के पीछे या थोड़ी सी प्रशंसा के पीछे हम कितना अधिक जो है वो अपने जीवन को और साफ सुथरा नहीं बना पाते हैं और गंदा करते चले जाते हैं, ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए, ओपन हार्टेड। तीसरी बात है सिंपलिसिटी, इसके मायने भी, सादगी के मायने भी सरलता है। सिंप्लिसिटी कह लीजिएगा, या कि बहुत बच्चे होते ना भोले, बहुत इनोसेंट, इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है इनोसेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनोसेंट, मतलब बहुत भोला भालापन। अब भोले भालेपन का उदाहरण क्या है, कई लोगों ने यह सुना होगा, एक पिता के मित्र आए, वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो बेटे से कहा कि जाओ उनसे कह दो पिताजी है नहीं। अब बेटे जी हैं, अब वो क्या जाने कि क्या कहना चाहिए, सो जाकर के उनके मित्र से कह दिया कि पिताजी कह रहे हैं कि कह दो कि पिताजी नहीं है, कह दिया उसने। अब ये कहलाता है भोलापन। हम इसके पीछे ना कोई स्वार्थ है, ना कोई हमारा मकसद है उसके पीछे, जैसा था वैसा का वैसा प्रकट कर दिया, ये सादगी है। ऐसा ही सादगी का एक उदाहरण हम आपको दें, वो कबीर के साथ का है, वो भी शायद पहले सुना होगा आपने। मैंने सब उदाहरण इकट्ठे लगा लगा के दिमाग इकट्ठे रख लिए, जो जो पहले सुन लिए हो वो हमारे वापस, और जो जो नए हो वो रख लेना आप अपने पास। अब क्या करें, हमने बहुत कोशिश करी कि कुछ एक आध नया उदाहरण भी आ जाए, ये भी पुराना ही है। कबीर के बेटे ने एक बार कबीर से कहा कि घर गृहस्थी ऐसे नहीं चलती भजन भजन करने से, कुछ थोड़ा कमाना भी पड़ेगा, और आज खाने के लिए भी नहीं है, और हम तो सोचते हैं कि अब चोरी कर लेना चाहिए, स्थिति ऐसी आ गई है। तो कबीर ने कहा अरे वाह, इससे क्या होता होगा, इससे क्या होता, क्या करना पड़ेगा, दूसरे के घर जा करके उसका सामान वामान सब उठा लाएंगे, अपने काम आएगा। ठीक है, कबीर ने कहा ठीक है, तुमने ये पहले क्यों सोचा। तो लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ कि पिताजी इतने धर्मात्मा बने, भजन पूजन करते हैं, और जैसे ही हमने कही कि चोरी करें, सो कह रहे कि जब पहले कहा ही नहीं किया, अच्छा अच्छी बात है करो। तो कह ले आपको भी चलना पड़ेगा, कह ले चलो हम भी चलेंगे। रात में निकले, संत बनाई भीतर घुसबे की, घुस गए, कबीर को कहा कि बाहर खड़े रहना, आवाज दे देना अगर कोई खटपट की आवाज वगैरह हो तो। चले गए भीतर, बोरी बांधा बांधा उनने सब, और बाहर ले आए। तो कबीर ने कहा अच्छा इतना ले आए, अपन ये ले चलें, कह ले हाँ ले चलो। तो बुजुर्ग भीतर है, उनसे कह दिया तुमने, बुद्धू है आप, उनसे कहना होता तो इतनी रात को काहे को आते, और जी खोद खाद कितनी मेहनत करके ले आते। कहने नहीं भाई, तो ये नहीं समझ में आया हमारे, ये तो समझ में आया कि सामान ले चलो, लेकिन बिना कहे कैसे, सवेरे वो उठोंगे और देखेंगे तो परेशान होंगे, ये नहीं कर सकते हम। अब बताइएगा ऐसे व्यक्ति चोरी कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति पाप कर सकता है, इतना सरल व्यक्ति। ये है हमारे भीतर छुपी हुई सरलता का व्यवहार। अगर व्यक्ति सरल है तो उसके द्वारा कोई अहित दूसरे का संभव ही नहीं। जब जब भी दूसरे का अहित अपने द्वारा हो, समझना भीतर कहीं ना कहीं कठोरता या कुटिलता या कड़वापन कहीं ना कहीं है। सिर्फ इतना ही अगर ध्यान रख लें कि मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, तब भी हमारा जीवन बहुत सुंदर और बहुत अच्छा हो सकता है। हम और भी हमें कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति, मुझे तो नहीं लगता कि व्यक्ति सोचता होगा कि मुझे मायाचारी करनी है या छल कपट करना है, पता नहीं अनादिकाल के संस्कारवश, या कि बहुत थोड़ी सोचता हूं मैं कि अज्ञानता की वजह से या फिर वातावरण की वजह से, ये सब चीजें भी बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। मैंने तो कई बार कहा, बहुत स्पष्ट मैंने कहा कि मैंने तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे छल करने की इच्छा तो नहीं होती, पर इस दुनिया के बीच आकर के सीखे हैं, देखे हैं बहुत गौर से, और फिर हैबिट में भी आने लगता है कि ठीक है भैया, अपने को सेफ करने के लिए अपने को भी ऐसे ही करना चाहिए। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं आपसे, कहीं कोई उसमें वो नहीं है। बाकी इस तरह का स्वभाव व्यक्ति का रहता नहीं है कई बार, फिर भी व्यक्ति जो है बाहर की दुनिया में रह करके अपनी सुरक्षा, और जैसे कहते ना कि दूध का चला छाछ फूंक फूंक के पीता है, उस स्थिति में भी व्यक्ति बहुत कुछ अपने जीवन में अपवित्रताओं से घिर जाता है, बचना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा आपसे, अगर ऐसी मुश्किल भी आ जाए कि हमें छल करना पड़े, हमारा थोड़ा सा स्वार्थ सत्ता भी दिखाई पड़े, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि नहीं, फिर भी हमें अपने अभिप्राय को गंदा नहीं करना है, हमें अपने अभिप्राय को हमेशा परखते रहना है। हम मंदिर आए हैं तो भी हमें अपना अभिप्राय देख लेना चाहिए। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अच्छी क्रियाएं करते हुए भी हमारे अभिप्राय में खोट रह सकती है। जैनेन्द्र वर्णी ने लिखा कि ये जरूर हमें रोज करना चाहिए, मंदिर आए हैं तो अभिप्राय क्या है, कहीं ये अभिप्राय तो नहीं है कि लोग मुझे धर्मात्मा माने, कहीं ये अभिप्राय तो नहीं है कि मेरे बच्चों का विवाह अच्छी जगह हो जाए, लोग, मैं मंदिर आता हूं इसलिए मुझे अच्छे लोगों से संबंध हो जाएगा, इस अभिप्राय से तो मंदिर नहीं आ रहे, कहीं अपने मित्र को अपने साथ फ्री में घुमाने ले जाते समय यह अभिप्राय तो नहीं है कि ये पढ़ नहीं पाएगा तो कमती नंबर आएंगे, मेरे अधिक आ जाएंगे, कहीं इस अभिप्राय से उसे सिनेमा दिखाने और घुमाने तो नहीं ले जा रहे हैं, कहीं इस अभिप्राय से दूसरे के साथ ईमानदारी कर रहे हैं कि कभी अगर एक आध बार बड़ी बेईमानी करेंगे तो इसको विश्वास ही नहीं होगा क्योंकि जिंदगी भर मैंने इसके साथ ईमानदारी की है। ऐसे अभिप्राय में खोट होने में ज्यादा देर नहीं लगती। और भी बातें वो कहते हैं कि कहीं इस अभिप्राय से त्याग तो नहीं कर रहे कि लोगों के बीच मैं त्यागी कहलाऊंगा या कि कल के दिन मुझे अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी। ऐसा ये सब अभिप्राय, ये अपने आप को ठगने वाली चीज है, आत्म प्रवंचना जिसको कहते हैं। ऐसे इन परिणामों से अपने को बचाना ही आज के आर्यों धर्म की उपयोगिता है। बहुत कठिन तो है बात, इतनी आसान तो नहीं है जितनी आसानी से हमने आपसे कह दिया। बहुत सारी मायाचारी तो मैं सोचता हूँ कि सहज रूप से हो जाती है, हित के लिए की है, अहित के लिए नहीं की है। ऐसी मायाचारी माँ तो जरूर करती है, कई बार अपन इस चीज को समझ चुके हैं। घर में चार दिन का सामान रखा है लेकिन पहले से ही हल्ला करना शुरू कर देते, खत्म होगा अभियान है घोनिया बड़ा आगा सब, अब ने ले आओ तो अब एकदम थोड़ी आखिरी दिन कहेंगे। इतनी मायाचारी तो बेटे को भी जो है मायाचारी करके और अच्छे से अच्छी चीज खिलाने की कोशिश करती है, परिवारजनों के प्रति भी। ये जो मायाचारी है वो एक बहुत सहज है, हमारा अभिप्राय वहां अगर खोटा नहीं हो भैया तो ये कोई अहित करने वाली चीज नहीं है, अपना भी और दूसरे का। इतना ही देख लें, सभी कषायों के प्रति एक ही बात अगर याद रह जाए कि मैं कषाय तो कर रहा हूं, कषाय के बिना तो मेरा चलता नहीं। कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि मैं निष्कषाय हूं तो वो भगवान ही हो सकता है, संसारी प्राणी तो नहीं हो सकता। संसारी प्राणी को तो कोई ना कोई कषाय लगी चार में से, अब लेकिन उस कषाय के माध्यम से दूसरे का अहित ना हो, बस मुझे सिर्फ इतना कर लेना है तो दूसरे का अहित नहीं होगा तो मेरा हित तो हो ही जाएगा, दूसरे का हित हो या ना हो। हम दूसरे के हित करने की चेष्टा, आचार्य महाराज कहते दूसरे का हित करने की चेष्टा या दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करो चाहे ना करो, लेकिन दूसरे का अहित ना हो और दूसरे को पीड़ा ना पहुंचे, ऐसे अभिप्राय को अपने जरूर से बनाए रखना चाहिए। एक और बहुत छोटी सी टॉल्स्टॉय की कहानी और फिर अपन अपनी बात पूरी कर देते। मैं सोचता हूँ कि मैंने सारी बात जो आपसे कहनी थी वो कह दी है। अब दो कहानियां एक साथ मेरे सामने हैं, उनमें से टॉल्स्टॉय वाली सुनाऊं या कि वो महाराज जी वाली सुना दूं, अब वो मामला गड़बड़। बाबा 5 मिनट रह गए हैं, दो ही सुनाओ। दो कैसे सुनाए, एक सुनाएंगे, टॉल्स्टॉय वाली बाद में सुनाएंगे, अभी तो वो महाराज जी वाली सुनाएंगे हैं। ये प्रथमानी युग में आती है और शायद सबको मालूम भी। क्या हुआ था, एक माशोकवासी मुनि महाराज थे हैं, बहुत तपस्वी थे। उनकी तपस्या का ये चमत्कार हुआ कि पंचाश्चरी होने लगे, एक महीने का उन्होंने उपवास किया। दूसरे एक महीने बाद उनकी पाड़ना होने वाली थी लेकिन वे सवेरे सवेरे वहां से विहार करके चले गए क्योंकि बहुत तांता लगा था लोगों के दर्शन करने का। सवेरे से उन्होंने पाया कि अब कोई नहीं है। देखो तपस्वी होगा तो यश तो उसे बहुत मिलेगा पर उसके अंतरंग में यश की आकांक्षा नहीं होगी, इतना ही है। हम बहुत पहले जब पहली बार आचार्य महाराज के आदेश से निकले थे तो फिर वापस जाके मैंने कहा कि लोग बहुत घेर लेते हैं महाराज, बहुत दिक्कत होती है क्योंकि 6 साल तक संघ में रहे तो बहुत लिमिटेड लोगों से ही संपर्क था। जब बाहर निकले तो फिर सब एक के बाद एक जुड़ना शुरू हुए। मैंने आचार्य से यही चीज कही थी पपोरा के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे आचरण में पवित्रता और सरलता है तो लोग तो आएंगे ही, बस हमें लोग आए हैं या नहीं आए हैं
इस बात की चिंता भर नहीं करनी है, और बाकी जिसको अपना कल्याण करना है उसको करने दो अपने माध्यम से, लेकिन हमने ना उनको इनविटेशन कार्ड डाला है इसलिए ना हम उनको दुत्कार सकते हैं, भगा सकते हैं। अब देखिएगा इतने लोग आ रहे हैं लगातार, और वे महाराज जी सोच रहे हैं कि धीरे से यहां से कब निकलें, नहीं तो सब लोग आएंगे, तो सुबह सुबह निकल गए। लेकिन उसी समय एक और दूसरे महाराज जी आकर के वहां पर बैठ गए, उनको भी मालूम नहीं था। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह से लोगों ने फिर आकर के और यही समझा कि यही महाराज जी मासोपवासी हैं, कहा कि अरे ये तो बड़े तपस्वी, उन्हीं के सामने, तो उन महाराज जी को ये चाहिए था कि वो स्पष्ट कह दें कि अरे नहीं आप भ्रम में मत रहो, मैं तो आज ही आया हूं, वो मासोपवासी तो चले गए, वो तो महामुनि थे, ऐसा उन्हें कह देना था। लेकिन उनको थोड़ा सा छल आ गया कि अरे इतनी प्रशंसा मिल रही फोकट में तो लाई में का हर जा, हाँ तो वो बैठे रहे और अपनी प्रशंसा सुन करके और प्रसन्न होते रहे, मन में छल भाव रहा आया, उसके परिणाम स्वरूप उनको कौन सी माया तैरग्यो नस्य मायाचारी से तिरंचायु का बंध हुआ और मरण करके वे हाथी हुए त्रिलोक मंडल हाथी। ये है त्रिलोक मंडल हाथी के जीवन की घटना, इस मायाचारी की वजह से नीच गति में तिरंच गति में जाना पड़ा। हमें भी जो है अपनी इस मायाचारी से बचने की कोशिश करना चाहिए, भले ही हमारी अज्ञानतावश हम मायाचारी करते हों, भले ही हम संस्कारवश करते हों, भले ही हम भयवश करते हों, कैसे भी करते हों भैया, जितने जल्दी बन सके और उसको छोड़ करके सादगी सज्जनता सरलता ये जो अच्छी चीजें हैं अपने भीतर लाना।
वीतराग विज्ञान नमूताही जाते भये अर्हंता दिमह, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के पर्वराज पर्युषण पर्व के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के, हम सब लोग इस विसर्जन पर्व में अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बाहर भीतर हमारा जीवन एक जैसा साफ सुथरा हो ये हम चाहते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो गंदगी में बैठना पसंद करेगा? सब चाहते हैं कि जहाँ बैठें जो हमारा घर हो वो साफ सुथरा हो। इसी तरह जिस दिन हमारे मन में ये विचार आ जाएगा कि बाहर जैसे हम साफ सुथरा पहनना ओढ़ना उठना बैठना पसंद करते हैं, ऐसे ही हमारे मन में भी साफ सुथरापन होना है। जैसे आकाश में बादल घिर जाएं तो आकाश का नीलापन कहीं खो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, और अगर रात हो तो उगा हुआ चंद्रमा और तारे भी जो बहुत चमकदार हैं वो भी नहीं दिखाई पड़ते, दिन में सूरज की रोशनी भी नहीं मालूम पड़ती, उसमें कहाँ ढक गई वो बादलों में, क्या वो समाप्त हो जाती है? नहीं, वो तो है वहीं पर, आकाश ज्यों का त्यों है, तारे ज्यों के त्यों हैं, चंद्रमा और सूरज वहां वैसे ही चमक रहे हैं, लेकिन एक बादलों की सतह, एक बादलों की तरफ ने उन सबको ढक लिया। बस जैसे आकाश को बादल छा जाने पर ढक लेते हैं, इसी तरह तो हमारे मन को भी ये दशाएं ढक लेती हैं, और हमारे मन की उज्ज्वलता या हमारे आत्मा की पवित्रता वो कहीं छुप जाती है, हम ही उसको नहीं देख पाते। तब फिर क्या करना चाहिए? वे कामनाओं के और विकारों के बादल अगर हमारे हट जावे तो हमारी चेतना वैसी ही शुद्ध और पवित्र हमें हासिल हो जाएगी। इतना काम अपने को करना है। कहीं से हमें पवित्रता नाम की चीज लानी नहीं है, क्योंकि पवित्रता और निर्मलता हमारा अपना स्वभाव है। पर ये जो विकृतियां हमारे भीतर आ गई, ये जो हमारे ऊपर एक कामनाओं का, इच्छाओं का, आकांक्षाओं का जो आवरण ढक गया है, वो हमको हटाना है। ये हमारे बस की बात है। अब ये बात अलग है कि कौन कितना इसमें सफल होता है। कामनाएं क्या चीज है ये थोड़ा समझना पड़ेगा। किसी भी चीज को उसकी वास्तविकता में जान लो तो फिर उसको छोड़ना आसान हो जाता है। जैसे घर में रखा हुआ कचरा कचरा मालूम पड़े तो जल्दी से बाहर फेंक आते हैं। अच्छा, और जब बाहर फेंकने जाते हैं तब भी इधर उधर देख लेते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। कभी अपन ने घर के बाहर कचरा फेंका हो और चार लोगों को बुला के फेंका हो, देखो इतना सारा फेंक रहे हैं, है? ऐसा करते हैं क्या? ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन हम अपनी कामनाओं को या थोड़ी सी इच्छाओं को कमती करते हैं, आज हम ये चीज नहीं खाएंगे। बहुत अच्छी बात है, तो बताने का एक जा रहा है कि हम ये नहीं खाएंगे। आप और बाकी खाते हैं ये बताने नहीं जाते। एक अगर नहीं खाई है तो चार लोगों को बताने, चार नई साड़ियां लेके आए हैं तो नहीं बताएंगे, एक बार जो दे रहे हैं किसी को उसको दिखाने की इच्छा। ये क्या चीज है? ये वास्तविकता से हम अपरिचित हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमें घर में फैला हुआ कचरा कचरा मालूम पड़ता है और कोई काम का नहीं मालूम पड़ता, सो हम बाहर फेंकने तत्पर हो जाते हैं, और अगर कचरा हमें अच्छा मालूम पड़े तो कौन फेंकेगा? लेकिन सबके कचरे अलग अलग हैं। हो सकता है कि अच्छा सुंदर सा 100 रुपए का नोट और बेटे को नहीं मालूम हो कि ये 100 रुपए में चलता है, वो 2 टुकड़े करने तैयार है, हैं? उसको कागज से ज्यादा कीमती नहीं है। लेकिन वो जो अभी अभी नदी के किनारे से सीप और थोड़े चमकदार पत्थर बटोर के लाया है और पेंट की जेब में धरे है, उसको आप हाथ मत लगाना। वो उसके हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है जो कि हमें कचरा मालूम पड़ता है। अज्ञानी को जो श्रेष्ठ मालूम पड़ता है, ज्ञानी को वो कचरा मालूम पड़ता है। इतना ही अपन को बोध हो जाए तो फिर कौन कचरा धरेगा? लेकिन तिजोरी में रखे नोट और तिजोरी में रखा हुआ हीरा कचरा किसी को नहीं मालूम पड़ता। बाहर पड़े हुए पत्थर कचरा मालूम पड़ते हैं। जब 15 महीने पहले से हीरे जवाहरात और रत्न की वृष्टि होती भगवान के आने के पहले, तो कई लोग पूछते हैं कि महाराज कैसे होती है वो समय, बिल्कुल बरसत रहे दुनिया को उठाते नहीं होगी, किसी को फुर्सत नहीं है, क्योंकि घर है खुदाई गिर रहे ढेर, बाहर के को उठाए कचरा में नाली में डरे, और अब तो अगर नाली में एक अन्नी गिर जावे तो धोखे रख लें। बिल्कुल, ये क्या चीज है? ये हमारी उस वास्तविकता को नहीं समझने की वजह। हमारी कामनाएं कब खत्म होंगी? हम कितना भी कहते रहे कि हमारी इच्छाएं खत्म हो जाए, हमारा लोभ खत्म हो जाए, हम सोचते हैं कि हमें वास्तविकता का बोध हो जाए तो हमारा लोभ क्षण भर में नष्ट हो जाए। हमें यह एहसास होना चाहिए भीतर कि ये चीज हमें सिर्फ आशा जागृत कर रही है। हमें कामनाओं की तासीर मालूम पड़ जाए, कामनाओं का स्वभाव मालूम पड़ जाए, तो फिर हमारे भीतर उठने वाली कामनाएं अपने आप सबसाइड हो जाएंगी या कि वो नष्ट ही हो जाएंगी। क्या है कामनाओं की तासीर? ये कभी पूरी नहीं होती। पहली बात, ये आशा बहुत जगाती हैं,
और हमें धोखे में रखे रहती। ये हमेशा जाने से पहले एक नई संतान अपनी छोड़ करके चली जाती है, ये तासीर है। हम इसको चाहे जितनी बार अनुभव करना चाहें कर सकते हैं। कामनाएं दुष्पूर हैं, ये वाक्य है आगम का, इनको कोई कभी पूरा कर नहीं पाया। ये हमेशा आगे आगे और मिलेगा इस बात की आशा जागृत करती हैं और हमें एक भ्रम में रखे रहती हैं। और जब जब ये पूरी होती मालूम पड़ती हैं, तब तब ये पूरी ना हो करके एक और नई आशा हमारे जिम्मे छोड़ करके चली जाती है। क्या करना चाहिए? ये इनकी तासीर है, कामनाओं को परिष्कृत करना चाहिए। कामनाओं को परिष्कृत करने के मायने, हम पहले कई बार इस चीज को शायद कर चुके हैं, आज जरा सा टच कर रहा हूं मैं, फिर उसके बाद अपने को जो वास्तविक बात है वो अपन को करनी है। कामनाओं को जीतने का उपाय क्या है? कामनाओं का परिष्कार करना है। कौन सी कामनाएं मेरे और दूसरे के हित में हैं, वे ही कामनाएं रखनी हैं। बाकी जिनसे मेरा अहित होता है या दूसरे का अहित होता है, वो कामनाएं मुझे नहीं करनी है। इतना सा अगर अपने भीतर हम विचार कर लें, कोई भी चीज अपनी पूर्ति जब हम करते हैं, किसी भी इच्छा की पूर्ति करते हैं, उस समय ये विचार कर लें कि शिक्षा की पूर्ति तो मुझे करनी है, लेकिन इस शिक्षा की पूर्ति से मेरा अहित तो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ठीक है, पर मेरा अहित नहीं होगा, इससे दूसरे का अहित हो सकता है क्या? नहीं, दूसरे का भी नहीं हो रहा फिर ठीक, और अगर दूसरे का हो रहा है तो थोड़ा हाथ खींच लेना, और अपना ही हो रहा है तो खैर अपना अहित होता है। तो अब कोई बिल्कुल ही गया बीता होगा तो बात अलग है कि बिल्ली हो गए और घर में घुस गई हो और दूध की बोंगनियां होके हाथ में आ गई हो, तो फिर तो तुम पीछे से लठिया मारो तो भी तो बगरा के और थोड़े बहुत पी के इंजे है, अब वो मैं कछु गुंजाइश की बात नहीं, ये उसका स्वभाव। लेकिन हम ऐसे गए बीते तो है नहीं, हम तो अपना अहित जान करके उस कामना को फौरन छोड़ सकते हैं। बस इतना सा काम अगर हम कर लें। और एक चीज है इसको जीतने की, संतोष के द्वारा इसको जीता है। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है संतोष। ये होता क्या है? ये संतोष नाम की चीज है क्या? ये सुनते तो बहुत है, तो अनुभव तो हमारा बहुत कम है संतोष का, असंतोष का जरूर है। उस पर अपन थोड़ा विचार कर लेते हैं। जो चीज हमें प्राप्त है वो दिखाई न पड़ना, और जो नहीं है प्राप्त उसी उसी तरफ ध्यान जाना, इसका नाम है असंतोष। ये तो अनुभव वाली चीज है, इसमें क्या बात है? देख लो आप, जो चीज हमें प्राप्त हो जाती है वो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए एक जगह लिखा है कि असंतोष का पेट बहुत बड़ा होता है, हैं? उसके नीचे जो भी चीज आता थी वो दिखती नहीं है, उससे दूर जो रहती वो दिखाई पड़ती है। जो जितना हमें प्राप्त होता है वो हम देख नहीं पाते हैं, ये समझ लेना कि असंतोष है कहीं ना कहीं। अपनी उपलब्धि, अपनी प्राप्ति अगर हमें ही नहीं दिखाई पड़ती, प्राप्ति कैसी? मेरे दो आंखें हैं, मेरा सौभाग्य कि मेरे दोनों आंखें हो ठीक ठीक काम करती। कभी ध्यान ही नहीं गया होगा, कभी ध्यान गया भी होगा तो अगर किसी की एक होगी तो थोड़ा ध्यान गया होगा कि इसकी एक ही है, चलो अपनी तो दो ही है, हैं? अपने दो हाथ जो कि तो साबुत हैं, इस पर कभी ध्यान नहीं जाता। जो जो पा लेते हैं वो ध्यान नहीं जाता है, जो नहीं प्राप्त हुआ है। और मजा यह है कि दूसरे को अगर वो प्राप्त हो गया है तब तो और ज्यादा। मुझे प्राप्त नहीं हुआ और किसी को नहीं हुआ तो भी गम खाए रहे, कछु दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हुआ और दूसरे को प्राप्त हो गया, तब मालूम पड़ता है कि जैसे दूसरे को तो फोकट में प्राप्त हो गया है, योग्य तो मैं हूं, ये तो सब अयोग्य लोग हैं, बेईमानी से इनको प्राप्त हो गया। ऐसा मेरे भीतर ये चलता रहता है साहब, ये सारा खेल असंतोष का है। एक तो व्यक्तिगत असंतोष होता है, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कमियां होती हैं जो उसे व्यक्तिगत तौर पर सालती रहती हैं, वो व्यक्तिगत असंतोष है। एक पारिवारिक असंतोष है, दूसरे के परिवार के लोग अपने परिवार से बेहतर मालूम करते हैं,
वे मुझे प्रिय मालूम पड़ते हैं, मुझे अपने परिवार के बेटे से बाजू वाले का बेटा ज्यादा होशियार मालूम पड़ता है। यही तो मेरा असंतोष, ये मेरा पारिवारिक असंतोष। मुझे दूसरे वाले के फ्रिज से अपना वाला फ्रिज घटिया मालूम पड़ता है। ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि मेरे वाले फ्रिज से दूसरे वाले का बढ़िया मालूम पड़ता है। हाँ, ये उल्टा हिसाब है, अपना घटिया मालूम पड़ता है ऐसा कहां कह रहे हैं, नहीं, दूसरे का बढ़िया मालूम पड़ता है। यही असंतोष है, मेरा भी बढ़िया है दूसरे का भी बढ़िया है, ये संतोष है। दूसरे का बढ़िया है, हाँ मेरा तो है सो है ही, लेकिन दूसरे का बढ़िया है। बस यहां से शुरू होता है पारिवारिक असंतोष। हम अपने ही बच्चों के सामने अपने ही बच्चों की छीछालेदारी करते हैं। हमारा बेटा तो पढ़ता ही नहीं है, वो उनका देखो 90% लेकर के आया। वाह, ये आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं 90% वाले की, या कि अपना असंतोष जाहिर कर रहे हैं? ये दिखता नहीं है अपने को, ये लोभ अपने को नहीं दिखता है। असंतोष के रूप में हमें बाहर प्रकट होने में देर नहीं लगती है, ये लोभ ही है। ऐसे हमें देखना पड़ेगा, अपने भीतर झांक करके देखना पड़ेगा कि कहां बैठा है वो असंतोष। पारिवारिक असंतोष, सामाजिक असंतोष, जरा सा बाहर निकले हैं और वहां समाज के बीच अगर थोड़ा मान सम्मान में कमी रह गई है तो एक असंतोष अपने भीतर पैदा होना शुरू हो जाता है। आस पड़ोस में असंतोष, कितने तरह का असंतोष। अभी हम बैठे यही कह रहे थे कि आर्थिक रूप से कोई असंतुष्ट है, कोई पारिवारिक रूप से, कोई सामाजिक रूप से असंतुष्ट है। मुझे एक भी चेहरा तो ऐसा नहीं दिखता जो प्रफुल्लित हो और जो ये कहे कि मुझे सब बात का सुख है, सब बात का संतोष है, क्योंकि संतोष और सुख मेरे भीतर से आता है, बाहर से कहीं से नहीं आता। ना कोई मुझे संतोष नाम की चीज दे सकता है, ना मुझे कोई सुखी कर सकता है। मैं दुखी होना चाहूं तो हो लूं, मैं सुखी होना चाहूं तो हो लूं, मैं संतुष्ट हूं, जितना संतुष्ट हूं उतना सुखी हूं, जितना असंतुष्ट हूं। कोई अगर दुखी है तो समझना कि एक ही वजह है इस संसार में दुख की। अगर मैं भी दुखी हूं तो मेरा भी वजह एक ही होगी, कहीं ना कहीं मुझे असंतोष होगा, या तो अपने जीवन से असंतोष होगा या अपने आसपास कहीं असंतोष का कोई कारण छुपा होगा। एक ही कारण है, यही है असंतोष। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि ये संतोष क्या चीज है और असंतोष क्या चीज है। जब हम किसी चीज में से उसका कुछ अच्छा नहीं देखते हैं और उसका बुरा पहलू देख लेते हैं, समझना यह भी असंतोष ही है। आधा गिलास भरा हुआ है दूध से, जिसमें डली है काजू किशमिश और पिस्ता और बादाम और केसर। अब डालो तो फिर अच्छे से ही डालो, उसमें क्या दिक्कत है। आप सोच रहे होंगे कि लो जी खाई है, नहीं हमारा आज ने, और कह रहे हैं कि काजू पिस्ता और बादाम, और जी कहां कहां से देखते रहते किराने की दुकान में है? नहीं, ये नहीं दिखाई पड़ता है कि आधा गिलास भरा है और इतना बढ़िया है। वो जो आधा खाली है ना, वो तकलीफ देता है। ये क्या चीज है? वो जो आज सुबह से शाम तक मैंने मेहनत की है दुकान पर और 200 रुपए आए हैं, वो नहीं दिखाई पड़ते हैं। वो जो सुबह से 400 सोच के गया था उसमें से 200 कमती आए हैं, वो ज्यादा तकलीफ देते हैं शाम को। 200 का सुख तो चौपट हो गया, वो जो 200 जो आने के थे ही नहीं लेकिन मन बना रखा था कि आएंगे, वो जो नहीं आए हैं वो मुझे दुख देते हैं। ये है असंतोष। वो जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मुझे संतुष्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो प्राप्त नहीं हुआ उस तरफ दृष्टि है। भैया, दृष्टि को बदलना पड़ेगा। अगर हमारी दृष्टि बदल जाती है तो हम बहुत आसानी से जितना हमें प्राप्त है उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे। और ये लोभ नाम की जो कषाय है, लिखा है कोहे पी अपना से ही, क्रोध प्रीति का नाश कर देता है, मान विनय का नाश कर देता है, माया विश्वास का नाश करती है, लेकिन लोहो सब विनाश से ही, लेकिन लोभ सबका विनाश कर दे, ऐसा लिखा हुआ है। तब फिर कहते हैं कि कैसे जीतें? क्रोध को प्रेम से जीतो, मान को विनय से जीतो, माया को ईमानदारी से जीतो, और लोभ को धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो, और सोच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार।
और बाकी छोटे हैं का?
ये बहुत बड़ी बात है, संतोष होना बहुत बड़ी बात है। वो ये कह रहे हैं, हम दूसरे को क्षमा भी तभी कर पाते हैं जब हमारे मन में संतोष हो, हम दूसरे से विनय तभी कर पाते हैं जब हमारे मन में संतोष हो, हम दूसरे का विश्वास तभी जीत पाते हैं जब आत्म संतोष हो। इसलिए कह रहे हैं कि धर्म बड़ो संसार में, सारे धर्म इसी में समाये हुए हैं। लोभ से ही माया, माया से ही मान, मान से ही क्रोध, ये सब लिंक्ड हैं एक दूसरे से। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम धरी हृदय संतोष कर्म तपस्या, दो बातें लिखें, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग में तो हमें करना पड़ेगा, धरना पड़ेगा संतोष, और कर्म देह से तपस्या करनी पड़ेगी, देह से त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि इस देह की सुविधा जुटाते जुटाते ही मुझे भीतर असंतोष है असल में। और अगर मैं इस देह के प्रति थोड़ा सा अनाशक्त हो जाऊं तो फिर भीतर मेरे संतोष आने में देर नहीं लगेगी। जिसकी देह से जितनी आसक्ति है उसके भीतर उतना असंतोष है। एक नई बात, एक सूत्र हमारे हाथ में आ गया, कहीं भी रख लीजिएगा, काम आएगा। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतनी अधिक भीतर असंतोष को वो जागृत करेगी। इसलिए शायद लिखने वालों ने लिख दिया कि धरी हृदय, भीतर तो हृदय में संतोष रखना और बाहर में शरीर से तपस्या करना। हृदय में संतोष तभी आएगा जब बाहर देह के द्वारा आशक्त ना होकर के अनाशक्त होकर के। उस अनाशक्त व्यक्ति ही तपस्या कर सकता है, आशक्त व्यक्ति देह से तपस्या कैसे कर सकता। एक चीज नहीं छूटती, अपन तो लोग छोड़ने की बात कर रहे हैं, एक जरा सी चीज नहीं छूट पाती है। इसलिए इतनी बात अपन को समझने की है, शौच शब्द जो कि लोभ के अभाव में हमारे भीतर प्रकट होता है वो क्या चीज है, सुचिता जिसको कहते हैं, निर्मलता जिसको कहते हैं। पहला अर्थ तो शौच का यही है कि हमारा मन निर्मल या कि चमकदार हो जाए, चमकीला होना। सुचिता मतलब चमकीला होना, टू एनलाइट। कौन व्यक्ति होता है एनलाइटेड, कौन व्यक्ति होता है चमकदार, किसका जीवन होता है चमकदार? एक घटना आती है, एक साधु जी थे तो वो नहाने जाते थे नर्मदा में, नहा करके वापस आते तो एक व्यक्ति उन पर थूक देता, उसने एक दिन थूक दिया और उन्होंने मुस्करा करके फिर से नहा करके वापस आया, उसने फिर से 100 दफे थूका, उसने 100 दफे, और उन्होंने फिर से नहा के आ गए। लेकिन जब 100 दफे के बाद भी वो हार गया तो उसने कहा कि धन है आपका क्षमा भाव। ये क्षमा भाव का उदाहरण तो है ही, लेकिन आपने अपने मन को कलुषित नहीं होने दिया, आपका मन फिर भी ज्यों का त्यों उजला और निर्मल बना रहा, ये बात कीमती है। नहीं तो जरा जरा सी मन बात में हम अपना मन गंदा कर लेते हैं, दूसरा जैसे कि हमारा रेगुलेटर हो, ऐसा लगने लगता कई बार कि दूसरे ने जरा बटन दबाया जैसे पंखा चालू हो जाता, ऐसे दूसरे ने जरा गाली दी अपना पंखा भीतर चालू हो गया, क्रोध आ गया। दूसरे के हाथ में है अपना बटन, उसने थोड़ी प्रशंसा करी, मन में गुदगुदी, आहा बहुत अच्छे, अपन क्षण में संतुष्ट हो गए। और क्षण में ये है मलिनता, हमारा मन कितनी जल्दी जो है विकार से ग्रसित हो जाता है जरा सी बात में जो है। कहते अपने मन को चमकीला बनाने का नाम है सुचिता, जैसे कि ये उदाहरण है। दूसरा है सुचिता के मायने भीगापन, भीगापन कहलाता, मन भीग जाता कभी कभी, बहुत दुख में हो अपन और कोई आकर के धीरे से कंधे पर हाथ रख दे और कहे कि डोंट वरी आई एम विद यू, कैसा लगता है जब कोई कहे कि घबराओ मत मैं तो हूं तुम्हारे साथ में। और अगर ऐसा कहते कहते उस सहानुभूति देने वाले के भी 2 आंसू निकल आए तो अपने सारे आंसू सार्थक मालूम पड़ने लगते हैं। मन कैसा भीग जाता है, अभी तक दुख के आंसू आ रहे थे, अब उसके आंसू देख करके हर्ष के आंसू आने लगे, ये क्या है? ये है सुचिता, जहां हमारा मन भीग जाता है, जहां हमारा मन जैसे थका हारा बेटा घर लौट करके आए और दरवाजे पर मां इंतजार खड़ी कर मिल जाए करती हुई, तो जितनी थकान दिन भर की है सब खो जाती है। और अगर पीठ पर वो हाथ धर के धीरे से बस्ता उतार के एक तरफ धरे तब उस बेटे से पूछे कोई कि कैसा लगता है, ये कहलाता है मन का भीगापन। निराला हुए हैं एक कवि, वो अपने 300 रुपए किताब के प्रकाशक से लेकर के चले आ रहे हैं। ये वाला मामला इसका पूरा हो गया। जिसका भी हो, अगर इसमें और उसको लोभ जागृत हो भरने का, तो पलट दे उसको, उसके बिना नहीं हो सकता। और अगर पीछे की कैसेट खाली नहीं हो तो दूसरी लगाना पड़ेगी। हम तो रोज कैसेट बदलते हैं नई नई, हैं, और भरते जाते हैं, भरते चले जाते हैं, कभी भी रिक्त होने वाला मामला नहीं है। ये इसी का नाम असंतोष है। खैर, मैं आपसे वो कह रहा था, निराला चले जा रहे हैं, 300 रुपए हाथ में है, प्रकाशक ने अभी अभी बामुश्किल साल भर के बाद उस किताब के दिए हैं, और रस्ते में एक भिखारिन मिल जाती है तो मन दुखी हो जाता है। वो कहती, बाबू एक रुपया दे। निराला कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, कितने रुपए देने से तुम भीख मांगना छोड़ दोगे? उस भिखारिन को थोड़ी हंसी आ जाती कि बाबू हमसे हंसी कर रहे हैं। तो कहती है कि बाबू हमसे हंसी क्यों कर रहे हो? आपकी बार वो बाबू नहीं कहती, आपकी बार कहती बेटा मैं कितनी बूढ़ी हो गई, मेरे से तू हंसी कर रहा है। बस कहते हैं कि निराला पूरे के पूरे 300 रुपए निकाल करके उसके हाथ पर धर देते हैं कि अब तुमने मुझे अपना बेटा कह दिया है तो मेरी मां होकर के तुम भीख नहीं मांग सकते। अब ये 300 रुपए पूरे रख लो, जीवन भर भीख नहीं मांगना, ये तुम्हें सौगंध तुम्हारे बेटे के द्वारा। ये कहलाता है मन का भीगापन, ये कहलाता संतोष मेरे ख्याल से। जयेंद्र कुमार को बहुत तकलीफ है, बहुत बड़े साहित्यकार हुए और दिल्ली में हॉस्पिटलाइज हुए, और वहां डॉक्टर आके कहता है धीरे से कि मिस्टर जैन आपकी स्थिति बहुत मुश्किल है, आप लगभग पैरालाइज हो चुके हैं और कब की आपको बहुत कुछ जम गया है, एक बार अपने ईश्वर को जरूर याद कर लीजिए। और डॉक्टर चले जाते हैं। इनके मन में हल्की सी पीड़ा होती है, लिखते हैं अपने संस्मरण में कि मुझे हल्की सी पीड़ा हुई, और उसके बाद तो जो है, और याद आया कि मैंने कब नमोकार पढ़ा था, उसके बाद तो पढ़ा ही नहीं, कब भगवान को याद किया था फिर उसके बाद तो किया ही नहीं। और ये डॉक्टर मेरे से कह रहा है और अब मेरा बचना संभव नहीं है। और कहते हैं कि उनके अंदर पता नहीं कहां से इतने जोर से वेद आया कि फूट फूट करके वो आधे घंटे तक, जो व्यक्ति कभी जीवन में आंसू भी नहीं आए, जिसने दूसरे को दुर्ला दिया लेकिन स्वयं नहीं रोया, वो व्यक्ति फूट फूट कर रोया। आधे घंटे के बाद डॉक्टर आकर के उनसे चेक करने पर कहते हैं कि मिस्टर जैन आपने कौन सी मेडिसिन ली? तो वो कहते मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैंने बहुत वर्षों के बाद बहुत मन से अपने ईश्वर को याद किया। ये है मन का भीगापन, ये है संतोष की अब तो सांसें चार रह गईं, अब सब छोड़ा मैंने, मेरे साथ मेरा ईश्वर है। मैं सोचता हूं क्या ऐसा मन का भीगापन अपने को नहीं प्राप्त हो सकता? क्या दिन भर में कोई ऐसा अवसर अपन नहीं जुटा सकते जिससे कि हमारा मन भीग जाए? उन लोगों के पास बैठे जिनसे हमारा मन भीगता हो, जिनसे हमारा मन गंदा होता हो, उनके पास काय को बैठे? उनके पास बैठना ही पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन दिन भर में एकाध तो ऐसा खोज लेना चाहिए जहां जाके मन